उन्होंने बेलॉस होकर काम किया, ये अल्लाह को पता है और यही काफी है। असल में छोटे लोग अपने जैसे छोटे छोटे इंसानों में नाम बनाने की फिक्र में रहते हैं, और ये बड़े लोग थे ना, वाकई वो बड़े ही थे, क्योंकि वो उस बड़े की नजरों में अपने मकाम बनाने की फिक्र में रहते थे। हम छोटे हैं तो छोटे ही काम और छोटे ही लोगों में, अपने जैसे छोटे छोटे लोगों, हम उस बड़े के लिए नहीं फिक्र करते कि वहां हमारी कोई वैल्यू बन जाए, वहां पे हमारी कोई कदर बन जाए, वहां पे हमारा नाम लिया जाए। वमा काना, और नहीं था ली रसूल, ये किसी रसूल के, आइए अतिया भी आयत इल्ला भी इज़्निल्लाह, कि वो ले आता कोई निशानी मगर अल्लाह के इज़न के साथ। ये बात क्यों कही गई? इसलिए क्योंकि जो अहले मक्का थे ना, वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते रहते थे कि हमें मौजज़ा कोई दिखाएं, कोई मौजज़ा लेकर आएं, इस बहुत पहाड़ कोई सोने का बना दें, यहाँ पे नहरें जारी कर दें, ये कर दें, तो फिर हम ईमान ले आएंगे, हम आपको मान लेंगे। और तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि आज तक भी जितने रसूल आए, कोई भी अपनी मर्जी से कोई मौजज़ा नहीं ला सका, कि कोई अपनी मर्जी से करता, तो कोई मूसा अलैहि सलाम ने अपनी मर्जी से कोई असा को सांप नहीं बना लेते थे कि जब चाहे ये कर, वो अल्लाह ताला ही दिखाता है, वो ही चाहे तो दिखा सकता है, ये उसके हाथ में नहीं है, रसूल के हाथ में। मौजज़ात कोई तमाशा नहीं है। आयत आयत का माना यहाँ पे क्या है, निशानी मतलब क्या, जो मौजज़े हैं, ठीक है, तो ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि जब लोगों ने माना तो रसूल ने खुद ही निकाल के दिखा दिया और खुद ही बना दिया। रसूल में इतनी पावर नहीं है, उनके पास इतना इख्तियार नहीं है। अच्छा, जब ये बात कह दी गई रसूलों के बारे में, तो ये बताएं जो हमारे यहाँ इतने औलिया, अल्लाह की करामतें और इस तरह की चीजें हैं कि उन्होंने ऐसे दिखा दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इतनी कहानियां बनी हुई है, इतनी किस्से बने हुए हैं कि हर मिजार के साथ कई बुजुर्गों के किस्से कहानियां बताए जाते हैं, वो कैसे अपने तौर पे कर सकते थे अगर रसूल नहीं कर सकते? रसूल वो नहीं कोई मौज से अपनी मर्जी से दिखा सकते, ये आयत आपको साफ बता रही है। तो क्या औलिया अल्लाह के अंदर इतनी पावर थी कि वो खुद ही करामात दिखाते रहते? असल में जो रसूल होता है उसके हाथ से जो कोई, यानी एक नेचर से हट के कोई चीज होती है, उसको मौजज़ा कहते हैं। और जो औलिया अल्लाह, बुजुर्गाने दीन और ये हैं, उनके हाथ से कोई ऐसी अननेचुरल सी चीज हो जाए, खरके आदत चीज हो जाए, तो उसको कहते हैं करामत। तो क्या वो अपनी मर्जी से ही होती रहती थी, करते रहते थे, ये करामात दिखाते रहते थे? सब अल्लाह के इज़न से हो सकता है। फ़ाइज़ा जाए अमरुल्लाह, फिर जब आ गया अल्लाह का अमर। अल्लाह का अमर का मतलब क्या, यानी फैसला, फैसले का वक्त, नबियों और उनकी उम्मतों के दरमियान अल्लाह का जो आखिरी फैसला है ना, उसका वक्त आ गया। क्योंकि जब मौजज़ा आता है तो बस फाइनल फिर बात होने लगती है, अगर लोग मौजज़े को मानते हैं तो बचत हो जाती है, अगर नहीं मानते तो उनकी हलाकत का फैसला कर दिया जाता है। तो खुद ही बिल हक, हक के साथ काफरों पर अजाब का फैसला आया, और अंबिया और जो ईमान वाले थे उनको फतह हुई, ये था हक के साथ फैसला। तो फैसला हो गया, फिर उनको जिंदा रहने की मोहलत नहीं मिलती, फिर जब वो मौजज़े मांगते और उसके बाद मानते नहीं है, और खासिरा हुना लिकल मुबतिलून, और गलतकार लोग खसारे में पड़ गए, बातिल परस्त लोग जो हक के मुकाबले में खड़े होने वाले थे, जो पैगंबरों को नहीं मानते थे, जिन्होंने मौजज़ात को नहीं माना, फिर तो नुकसान में पड़े। अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल अनआम, अल्लाह ही वो जात है जिसने तुम्हारे लिए बनाए अनआम। अनआम कौन से हैं? मवेशी जानवर, चार किस्म के, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, इनके नर और मादा। यहां से अल्लाह ताला ने फिर अपनी नेमतों की तरफ तवज्जो करवाई है। वो पता है सूरत का एंड हो रहा है, तो दोबारा एक दफा फिर याद दहानी नेमतों की, कि देखो अल्लाह ताला की एक और निशानी पे गौर करो। जअला लकुम, इस लफ्ज को देखें, इन अल्फाज को, जिसने बनाए, लकुम तुम्हारे लिए, क्या मतलब है इसका? कि ये जो मवेशी जानवर हैं, जानवरों की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, इंसान की खिदमत, इंसानों के काम आने के लिए बनाए। कैसा है हमारा रब के देखो, उसने इंसान के लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं, उसकी खिदमत के लिए ये जानदार, ये पालतू सवारियां और कैसी कैसी जिनसे हम फायदे उठाते हैं, ये जानदार भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ही बनाए। ली तरकबू मिनहा, ताकि तुम सवारी करो इनमें से, बाज पर, व मिनहा ताकुलून, और इनमें से तुम खाते हो। अल्लाह ताला ने जानवरों का खसूसी तौर पे यहाँ पे जिक्र करके एक और अपना एहसान याद कराया, एक अपनी नेमत याद कराई कि देखो मैंने इंसान के फायदे के लिए ये जानवर बनाए, ये तुम्हारे काम आते हैं, तुम इनके ऊपर सवारी करते हो। आज ये आज तो आपके पास कोई 150-200 साल पहले से तकरीबन ये सवारियां चली हैं, लेकिन उससे पहले से लोग, और वो भी ये नहीं है कि आज भी हर जगह नहीं है, ये अभी तक भी जानवरों से लोग सवारी का काम लेते हैं। लेकिन इससे पहले आज तक इंसानियत किससे फायदा उठा रही थी सवारी के लिए? कोई उनके पास जहाज और ट्रेनें और गाड़ियां और ये नहीं थे, जानवरों के ऊपर ही सवारियां होती थी। तो इनके ऊपर, इनमें से बाज पे तुम सवारी करते हो, यानी जैसे ऊंट के ऊपर हो गई, घोड़े इनके ऊपर हो गई, और बाज को तुम खाते हो, जैसे कि अब ऊंट का गोश्त भी खाया जाता है, गाय भेड़ बकरी इनको भी खाया जाता है, यानी खुराक का जरिया भी है, और सिर्फ इसका गोश्त नहीं खाते आप, देखें कि इसकी तो, इनकी तो कोई चीज छोड़ते ही नहीं है, ना खाल छोड़ते हैं, ना हड्डियां छोड़ते हैं, खालों से भी क्या क्या बनता है आप खुद देखें। आज आपके ये होमवर्क है कि आप अपने घर में देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप मवेशी जानवरों की से ली हुई, कोई खाल है या बाल है या फूड प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ना खाल इंसान ने छोड़ी, ना हड्डियां छोड़ी, हड्डियों से भी जेलेटिन भी बनाते हैं और भी कई चीजों में काम आती है, आंते नहीं छोड़ी, उनसे भी ओजड़ी वगैरह से भी ये सर्जरी के लिए जो टांके लगाते हैं उसका धागा बनता है। तो इंसान बहुत सारे इनसे फायदे हासिल करता है, इनकी ऊन से आप देखें कि वूल से कितना कुछ बनता है, खास तौर पे सर्द मुल्कों के लिए जो ऊनी चीजें बनाई जाती है, आप इनके लेदर से देखें, आपके पहनने का सामान भी बनता है, फर्नीचर भी बनता है, लोग टेंट्स बनाते हैं इनकी खालों से, और बहुत सी चीजें काम मिलाते हैं इनसे। फिर सिर्फ मिनहा ताकुलून में आप सिर्फ गोश्त को ना सोचे, आप देखें दूध भी तो पीते हैं, बटर, घी, लस्सी, दही, ये सारी चीजें वहीं से तो आती हैं, मक्खन, चीज, तो ये जितने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं से आते हैं। तो सिर्फ गोश्त ही नहीं खाते, और भी कई किस्म के फायदे हैं जो आप इनसे ही हासिल करते हैं, और दूध कहीं और से नहीं मिल सकते, बना नहीं सकते खुद, कोई ऐसा तरीका नहीं हुआ कि दूध ऐसा बना लिया जाए खुद ही बाहर आर्टिफिशियल। और कुछ जानवरों के दांत तक इस्तेमाल होते हैं, और खाने में तो इंसान ने उनकी कोई चीज छोड़ी ही नहीं, जुबान तक भी खा लेते हैं उनकी, दिमाग भी खाते हैं, मगज भी खाते हैं, कितनी कुछ ये चीजें। तो अल्लाह ताला ने जो अनाम में रखे फायदे, इससे हमें एक और बात पता चलती है, ये जो लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन हो जाना चाहिए क्योंकि जानवरों के ऊपर ये जुल्म है कि आप उनको ज़िबा करते हैं तो खाते हैं, तो आप तो गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ही बनाया है कि तुम खाओ इसको, तो बेफिक्र होके खा सकते हैं। इस तरह तो कहने लगे तो फिर तो शेर की भी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हिरन को खा लेता है, और भी बाकी जो जानवर हैं, वह बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती हैं, परिंदे छोटे कीड़ों को खा लेते हैं, तो जो अल्लाह ने जिसकी गिजा बनाई है उसके लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम भी किया और उसको आजादी भी दी है उसके खाने की। तो आप देखें कि जहां पे अल्लाह ताला ने इस सूरत में और निशानियां दिखाई हैं, वहां पे एक जानवरों की निशानी की तरफ गौर करने को कहा गया कि तुम इनके ऊपर सवार होते। एक मजे की बात यह है कि अभी तक देखिए कुछ ऐसी जगह हैं पहाड़ी इलाके, या कुछ एक दफा दिखाया जा रहा था कि याक जो है, याक इसके ऊपर लोग सवारी करके, पहाड़ी इलाका था और बहुत बर्फानी इलाका था, तो वहां पे कोई सवारी नहीं जा सकती, ना कोई प्लेन ना कोई हेलीकॉप्टर, गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ सकती, इतने ऊपर लोग रहते थे। अब इंसानियत कहाँ कहाँ बसी हुई है ना, हम तो सिर्फ ये सोचते हैं ये हमारे इलाके में नहीं यूज हो रही तो शायद नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। वो इतने ऊंचे पहाड़ों पे बहुत हाइट पे रहते थे, तो वो याक से काम लेते थे और वो उसके ऊपर सामान लोड करके नीचे से लेकर आते थे, फिर वो उनकी औरतों को दिखा रहे थे कि उन्हीं की ये बालों से और इससे वो धागा बनाती थी, फिर कपड़े भी उन्हीं के लेदर से बनाते थे, और वो कहते थे इस पे हम सवारी भी करते हैं, अपना सामान भी इसी के ऊपर ढोते हैं, फिर इसी तरह इन्हीं का दूध पीते हैं, फिर इन्हीं को जिबा करके हम खा लेते हैं, यानी सारी उनकी जिंदगी उसके गिर्द घूम रही थी। तो हम ये आज भी आप देखेंगे हो रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलकुम फीहा मनाफे, हो तुम्हारे लिए इसमें और भी फायदे हैं। अब आप ये गिने फायदे, क्योंकि जितना आप इन चीजों में गौर करेंगे ना, उतना ही आपके दिल में शुक्र गुजारी पैदा होगी कि अल्लाह ताला ने कैसे इन चीजों को हमारे काम में लगा दिया। आपकी तो कोई दावत ही पूरी नहीं होती जब तक गोश्त ना हो, तो कहां से लाते ये अगर अल्लाह ताला ये जानवर ना पैदा करते। तो इनमें बहुत सारे फायदे हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं, इनसे क्या क्या बनता है। तो अब इनके मुनाफे आप देखें, अल्लाह ताला ने सूरह नहल में भी फरमाया वल अनआम खलकहा लकुम फीहा दिफ़ व मुनाफे व मिनहा ताकुलून, तुम्हारे लिए इसमें बहुत से फायदे हैं, अनआम में तुम्हारा गर्मी का लिबास है और बहुत और फायदे हैं, तुम इनमें से बाज को खाते भी हो। तो इसलिए आप देखें कि इनको अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ही बनाया और उसके फायदे के लिए बनाया, आपकी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बनाया। पर अगली बात इतनी प्यारी है, वल तबलुगु अलैहा हाजतन फी सुदूरिकुम, और इसलिए भी कि तुम पहुंचो इन पर अपनी हाजत को, जो तुम्हारे दिलों में हाजत है, यानी जो तुम्हारा दिल चाह रहा है जहां पहुंचने को, तुम इनके जरिए वहां पहुंचो। समझ आई बात, यानी अपने दिलों की मुराद को पहुंचो, यानी जहां तुम जाना चाहते हो वहां तक पहुंच सको। आप खुद सोचें इंसान पैरों पे चल के कितनी दूर तक जा सकता है, ये सवारियां ना हो तो इंसान क्या करे। आप अच्छा आज अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चलें गाड़ी को ही सोच लें, गाड़ी को भी आपके शायद आप आम को इतना बड़ा कोई एहसान ना समझे सवारी की उसमें खाने पीने में तो शायद आप समझ सकते हैं, लेकिन सवारी के तौर पे आपको इसकी शायद कदर ना आए। इसलिए अगर आप गाड़ी को सोचे, गाड़ी के लिए भी तो अल्लाह ताला ने जहन दिया ना कि आज इंसान गाड़ियां बना के और उसके लिए घूम फिर रहा है, गाड़ी में जो तेल डलता है वो अल्लाह ही मेहरबानी है कि जमीन से निकल रहा है, तो गाड़ी भी अल्लाह का एहसान है। आप वो सोचे कि आपके पास अगर गाड़ी ना हो, या किसी दिन आपकी गाड़ी अगर खराब हो जाती है, तो फिर आप देखें कि फिर आपको इस नेमत का एहसास होता है कि जहां मेरा जाने का दिल चाहता है, जहां मेरी जरूरत है, मेरी हाजत है, मेरा इरादा है, तो उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये कितनी बड़ी नेमत दी है। कहीं बहुत जरूरी है आपको पहुंचना हो, आपके पास गाड़ी ना हो, फिर आपको इसकी कदर आती है। जहां पे तुम्हारा दिल चाह रहा है जाने को, कोई मेल मिलाप है या कोई मस्जिद है या कोई कोई नेकी का काम भी आपने करना है, तो सवारी मौजूद है तो कर पाते हैं ना। बहुत दफा मुझे ये इस नेमत का एहसास होता है कि जब भी मैं निकलती हूँ कहीं बहुत दूर नहीं लेकिन 2-4 मील पे भी जाना हो, तो मेरे बहुत दिल में ये बात आती है कि अगर मुझे पैदल चलना पड़ता तो मैं तो नहीं चल सकती थी इतनी। और बहुत ज्यादा फिर शुक्र गुजारी आती है कि ये इतनी जल्दी 10-15 मिनट में यहाँ पहुंच गई हूँ, अगर पैदल चल रही थी तो सुबह से चलती तो अब तक पहुंचती। सोचा करें कि ये गाड़ियां सवारियां जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है मुझ पे, कितना एहसान है उसका कि उसने ये पैदा कर दी। और खास तौर पे जो सवारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं जानवरों को, तो अल्लाह ताला ने इन जानवरों को कंट्रोल में दिया इंसान के, तो तभी उनके ऊपर बैठ भी जाते हैं, सामान भी रख लेते हैं, और फिर खाने के लिए भी। तो आप देखें अगर ये ऐसे खूनखार शेर और चीते की तरह होते ये जानवर अनाम जो है, تو کون ذبح کرنے دیتا اپنے آپ کو؟ کیسے ان کو ذبح کرتے؟ چاہے چاہتے تو ان پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے تو ان کو پکڑ کے ذبح کر لیتے ہیں، چاہتے ہیں تو انسان کا بچہ بھی ایک اونٹ کی مہار پکڑ کے لے کے چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں بھی تو دے دیا، حالانکہ دیکھیں کئی گنا انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، بیل وغیرہ سے دیکھیں ہل جوتتے ہیں زمین کو، آج بھی جہاں پہ ٹریکٹر وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ بھی ہل جوتنے کے لیے یہ بیل ہی یوز ہوتے ہیں نا۔ تو پھر دیکھیں وہ کتنے طاقتور جانور ہیں، اونٹ کتنا طاقتور ہے، گائے کتنی طاقتور ہے، لیکن وہ احتجاج نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے آپ سے، کیسے بے زبان کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان پہ بھی تم سواریاں کرتے ہو، ان چوپایوں پہ بھی اور کشتیوں پہ بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اب اس میں صرف اگر آپ نے کشتی کا سفر نہیں کبھی کیا تو صرف فلک میں کشتی کو نہ سوچیں، کیونکہ کشتی دیکھیں جیسے سمندر میں چلتی ہے نا۔ تو ابھی انسان نے یہ ایجادیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی اس کے اندر، اس کو اتنا ذہن دیا کہ آج اس نے جہاز ایجاد کر لیا۔ تو لیکن کشتی بھی جیسے پانی میں چلتی ہے تو جہاز اسی طرح ہوا میں چلتا ہے، اور اسی طرح ہوا کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، جس بالکل جیسے کشتی پانی میں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لاز آف نیچر ایسے بنائے کہ جہاز اڑ سکتا ہے، پانی کا ایسا لا میں باندھا کہ کشتی چل سکتی ہے، تبھی چل رہے ہیں نا۔ تو اگر فلک سے آپ صرف کشتی ہی نہیں بلکہ آسمان میں اڑنے والی سواری بھی ذہن میں لائیں تو سوچیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ سواریاں نہ ہوتی تو لوگ دنیا میں کٹے پڑے رہتے، کوئی کہیں دوسری جگہ جا نہ سکتا۔ تو یہ کس نے نعمتیں دی ہیں، کس کی نشانی ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے بحری سفر بھی بری سفر بھی آسان بنائے تمہارے لیے۔ اب آخر میں ساری نشانیاں بتا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانی۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ نے ہمیں دکھائی، یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں تو اتنی عقل سمجھ بھی نہ تھی کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھتے غور کرتے، کبھی غور ہی نہیں کیے تھے، یہ بھی ہمیں سینس اس قرآن نہیں دی۔ اللہ نے دکھائی، اس طرف توجہ کرائی تو تبھی آج ہم اتنے سوچنے کے قابل ہوئے۔ تھوڑا بہت جو ذہن میں اب آ جاتا ہے وہ یہ اس قرآن کی برکت ہے۔ تو وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، اللہ نے توجہ کرائی ہے، اور صرف انہی نشانیوں کی طرف نہیں، یہ ہم نے سورہ نحل میں تو ساری اللہ کی نشانیاں پڑھی تھی نا، وہ ہے سورت جو نعمتوں کی والی سورت ہے، اس میں سب نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی نشانیاں دکھاتا ہے، اور ہماری چلتے پھرتے زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نشانیاں دکھاتا ہے کہ انسان کبھی حیران ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَأَيَّ آیاتِ اللہ تُنکرون، پھر کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے۔ اللہ ایسی ایسی واقعی نشانی دکھاتا ہے کہ انسان کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ تو واقعی اللہ کا معجزہ تھا، یا تو یہ تو واقعی اللہ نے کیا ہے، ورنہ یہ کام کہاں ہو سکتا تھا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں میں تو حیران ہوں کیسے اس وقت میں اللہ نے یہ کام کر دیا، ایسے میرا کام ہو گیا، یہ نشانیاں نہیں کی کیا، اس سے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ روز وہ نشانیاں دکھاتا ہے، زندگی میں بار بار دکھاتا ہے، کئی مواقع پہ دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ، پھر کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے، کس کس کو نہیں مانو گے؟ کیا تمہیں پھر پتہ نہیں چلتا کہ ایک رب ہے؟ کیا تمہیں پھر بھی اس کی پہچان نہیں ہوتی، وہ اس ذات کا پتہ نہیں دیتی یہ نشانیاں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر کر دی، دکھا دی، اور اپنی ذات کو چھپا لیا، اور ہمارے لیے یہ رکھ دیا کہ ہم اب ان نشانیوں کو دیکھ کے اس چھپی ہوئی ذات کو پہچانے جو ان کے پیچھے ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر ہر نشانی پہ لکھا ہوا ہے میڈ بائی اللہ، بس آپ کو وہ نظر چاہیے، ہر نشانی پہ لکھا، اور ایسے لگتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یریکم آیاتی، وہ دکھاتا ہے تم کو نشانی، کہاں دکھاتا ہے؟ ایسے لگتا ہے انسان اللہ کی نشانیوں میں گھرا ہوا ہے، جیسے چاروں طرف سے اس کو نشانیوں نے گھیرا، چاروں طرف سے۔ اپنے اندر دیکھ لے تب نشانی ہے، اس کا جسم نشانی ہے۔ ایک دن یہی میں سوچ رہی تھی، دیکھو ہمارے اعضاء جو ہیں باڈی پارٹس میں، کوئی کڈنیز کام کرنا بند کر دیں، یا ہارٹ کام کرنا بند کر دیں، یا کوئی اور، تو हम में इतनी भी नहीं ताकत है, हालांकि हमारा अपना ही जिस्म है, कितने करीब है हमसे। इतनी नहीं ताकत है कि उसको दोबारा पंप करने पे लगा दे, इतनी ताकत नहीं है कि एक किडनी को रिपेयर कर ले। घर में कितनी चीजें टूट फूट जाती हैं, हम उनको सीधा करते हैं, ये करते हैं, हमारे अंदर नहीं ताकत। हम नहीं उनको सुधार सकते, सही कर सकते, काम पे लगा सकते, क्लियर कर सकते। वो अल्लाह के इज़्ज़त पे चल रही है, अल्लाह के कुन कहने पे वो सब कुछ काम कर रहा है। वो हार्ट कोई हमारे कहने पे, हमारे कुन कहने पे चल रहा है, आंखें हमारे कुन कहने पे चल रही है? नहीं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ तो ये काम कर रहे हैं अपना, वरना हम क्या इनको चलाने पे कादिर हैं? और कादिर हैं तो कोई मरे ही ना, सबके आजाद ही काम करते रहे, कोई अस्पतालों में ही ना जाए। इससे पता चलता है हमारे बस में नहीं है, ये निशानी नहीं है अल्लाह की। कितना बड़ा सिस्टम अंदर काम करने लगा हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम अपने जिस्म के अंदर जो जो हमारे आजा है उनके बारे में भी बताया था, कैसा कैसा वो काम कर रहे हैं। क्या उससे अल्लाह की कुदरतों का नहीं पता चलता? फिर बाहर देखो, ऊपर नजर उठाओ तो वसी व अरीज आसमान, वो एक निशानी नजर आ गया। उसमें निशानियां भी फैली हुई है, कहीं सितारे हैं, कहीं चांद है, कहीं सूरज है, कहीं दिन है, कहीं रात है। अल्लाह ने सजा दिया निशानियों। फिर अपनी नजर सामने करो तो उड़ते हुए परिंदे नजर आते हैं, ऊंचे दरख्त नजर आते हैं, पहाड़ नजर आते हैं, नीचे को देखो तो जमीन नजर आती है। इसमें रंगारंग चीजें, वो जो उसकी निशानियां वो नजर आती है। अपनी तरफ देख लो तो अपना जिस्म नजर आता है। किधर किधर तुम भागोगे, अल्लाह को छोड़ के किधर जाओगे, उसे पीछा छुड़ा सकते हो? हर चीज जुबान हाल से बयान कर रही है, जुबान हाल से, अपने हाल से बयान कर रही है कि अल्लाह ने मुझे बनाया, मैं अल्लाह की निशानी हूं। तुम बताओ फिर अल्लाह से कैसे पीछा छुड़ाओगे, कैसे भागोगे उस रब से? क्या फिर भी याद कराने के लिए, रब की याद कराने के लिए कोई और चीज चाहिए कि अब रब को याद रखो? क्या कोई और निशानी चाहिए? क्या ये निशानियां काफी नहीं है? क्या चलते फिरते उठते बैठते तुम्हें कोई निशानी नहीं नजर आ रही? फ़ाया आयात अल्लाह तुनकिरून, तुम कौन कौन सी निशानी का इनकार करोगे? ये नहीं मानती, वो नहीं मानती, वो नहीं मानती, किधर किधर नहीं मानोगे? तब ये अला रब्बी कुमार तो कसीबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे? तो अल्लाह ताला तो निशानियां दिखाता है, दिन रात दिखा रहा है, अपनी आंखें खोल के तो देखे, अंधों की तरह ना रहे। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया अंधा और देखने वाला बराबर नहीं होते, कहीं वो फिर भी चारों तरफ निशानियों में घिरे हैं फिर भी रब ना याद आए। अंधा ही तो है, तुम्हें फिर भी नहीं पता उसका, फिर भी तुम उसके नाफरमान होते हो, घिरे हुए हो तुम चारों तरफ से घिरे हुए, मगर ए देखने वाले तुझे रब ही ना याद आया, तुम कैसे इनकार कर सकते हो? कई फतकफुरून, कैसे तुम इनकार करोगे? हमने पढ़ा था ना, कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातम व अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम, सूरह बकरा में सवाल बनाता है। तो तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो? तुम तो मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, उसको उसको तुम कैसे भूल सकते? अल्लाह अकबर। अफलम यसीरू फिल अर्थ, क्या भला नहीं वो चले फिरे जमीन में? अब एक और निशानी देखो, चलो तुम्हें ये अपने चारों तरफ की निशानियां देख के नहीं याद आता, अय्यामुल्लाह से याद कर लो। अल्लाह के ये जो दिन है, जो पिछली हिस्ट्री गुजरी है, उसी से याद कर लो अल्लाह को। चलो फिरो जमीन में, क्या भला चलते फिरते नहीं, कहीं जाते नहीं हो? ये चल फिर के देखो ना, अब हमारी सैरें तो डिफरेंट तरह की होती है, उनमें अल्लाह की बात ही नहीं होती, क्योंकि हम सैर कहते हैं कि वो सब चीज से छुटकारा लेना, बस फन, अल्लाह को भूलना सैर है हमारी। अल्लाह ताला कुरान में बार बार सैर करने को कहते हैं, लेकिन उस सैर में क्या है? अल्लाह को याद करना, कि तुम्हें हर जगह रब की निशानी नजर आएगी। तुम देखो तो सही, सैर करके तो चले फिरे नहीं? فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, तो वो देखते हैं किस तरह अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे, जो पहले लोग गुजर चुके हैं, पिछले लोग गुजर चुके हैं, उनका अंजाम नहीं देखा तुमने? वो किस अंजाम को पहुंचे, क्या हुआ उनके साथ, कैसे थे वो लोग? कानु अक्सर मिन हुआ शब्द कुव्वत हुआ आसारन फिर अर्थ, तीन चीजें उनकी बताई। वो ज्यादा भी थे, यानी किस चीज में ज्यादा थे? इनसे, इनसे किनसे? कुफारे मक्का की बात हो रही है,
यानी किस में ज्यादा थे, तादाद में ज्यादा कह लें या